जिस प्रकार युग युगों के सृष्टि लीला विलास से थका मांदा नारायण प्रलय के समय क्षीर सागर की तरंगों के बीच शेष सैया पर माया सहित सो गया था, ठीक उसी प्रकार धर्माराव अरुंधति को अपने पांव से, हाथों से, संपूर्ण शरीर से ढक कर उसी श्वेत शैया पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, भौंरे फूलों के रद से मस्त थे, प्रातःकाल के हिमबिंदुओं से सिक्त थे। उनका कंठ स्वर बैठ सा गया था, मस्ती में वे हिलते डुलते न थे। भोर हुई, वृक्षों के शिखरों पर प्रत्यूष के रथ की हलचल को सबसे पहले देखकर पक्षी कूकने लगे। शकुन पक्षियों की जोड़ी अपने पंखों को झटकती हुई कूकने लगी और फिर सो गई। प्राग पर्वत की साफ सुथरी शिलाओं पर सूर्य भगवान की घोड़ों के खुर संभवतः फिसल रहे थे। इसी से सूर्य भगवान उन्हें कोड़े लगाकर हाँक रहे थे और उनके मुँह से निकलता हुआ झाग उषा की कांति बनकर प्राग सीमा में जहाँ तहाँ बिखर रहा था। अरुंधति और धर्माराव कमरे से बाहर आए। उस दंपति को देखकर सावित्री देवी ने सोचा, इन्हें देखने का सौभाग्य केवल मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे पति को नहीं। ऐश्वर्य पाने से क्या होता है, विख्यात होने तथा भोग विलास का अनुभव करने से भी क्या होता है। ऐसे बेटे और बहू को जी भरकर देख पाने में ही जीवन की सार्थकता है। दिन चढ़ने के बाद रामचंद्र राजू धर्माराव के घर आया। दोनों मिलकर बाहर गए। गांव वालों ने रामचंद्र राजू को अजनबी की भांति देखा। कुछ बड़े बूढ़े उससे परिचित थे। रामचंद्र राजू 20 वर्ष की अवस्था में तुनी चला गया था। पाद टिप्पणी में, तुनी आंध्र के पूर्व गोदावरी जिले की एक तहसील का नाम है। वहां के एक गांव में एक धनवान क्षत्रिय सज्जन ने उसकी चतुराई पहचान कर उसे अपने पास रखा। उस गाँव में सभी लोग रामचंद्र राजू का बड़ा आदर करने लगे। रामचंद्र अपने पिता से कुछ धनुर्विद्या सीख चुका था। लाठी तलवार चलाना भी उसे आता था, लेकिन वह कुशलता प्राप्त न कर सका। उसने सोचा कि जहाँ क्षत्रिय कुल के लोग बसते हों वहीं जाकर बसना चाहिए। वहाँ के लोगों ने उसका आदर किया। वे उसके साथ मिलकर भोजन करते थे, जानते थे कि सुबन्ना पेठ में उसकी जायदाद है। सही बातों में उसे अपने कुल में सम्मिलित मानते थे, लेकिन कोई उससे अपनी लड़की का ब्याह करने को तैयार नहीं होता था। उसी गांव में संस्कृत और धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ एक वृद्ध क्षत्रिय रहता था। उसके दोनों बेटे चल बसे थे। बड़े बेटे की लड़की 15 वर्ष की हो चली थी, पर निर्धनता के कारण उसका विवाह नहीं हो पाता था। बूढ़े ने रामचंद्र राजू को अपने पास बुलाया और उससे अपनी पौत्री का ब्याह रचाया। ब्याह के दिन से ही मानो रामचंद्र राजू के भाग खुल गए। लड़की का नाम था रथंतरी। पत्नी की ओर से रामचंद्र राजू को एक छोटा सा घर मिला। उसने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। पहले ही वर्ष में उसे 4,000 का मुनाफा हुआ। अनाज खरीदते समय 30 रुपये खंडी का भाव था और दूसरे वर्ष बेचते समय 80 का भाव हो गया। इसके बाद रामचंद्र राजू ने हल्दी का व्यापार किया, उसमें 2,000 का मुनाफा हुआ। फिर उसने पैसे का लेन देन शुरू किया। आदमी पढ़ा लिखा था, इसलिए गाँव के सही व्यवहार उसके हाथों में चलने लगे। उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। जिन क्षत्रियों ने पहले उससे विवाह संबंध जोड़ने से इनकार किया था, उनसे बदला लेने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई। रामचंद्र राजू ने अपनी पत्नी के दादा से स्मृतियों की शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत साहित्य तथा काव्य से ही परिचय प्राप्त किया। इतने में दादाजी चल बसे और रामचंद्र राजू सारी जायदाद का व्यवस्थापक बन गया। आज तक जो जमीन लगभग ऊसर पड़ी थी, उसी से रामचंद्र राजू की देखरेख में भरपूर उपज होने लगी। उस वर्ष 80 खंडी अनाज उपजा। रामचंद्र राजू के पद स्पर्श से ही जमीन कामधेनु बन जाती थी। 6 वर्ष के भीतर रामचंद्र राजू 70-80 हजार का आसामी बन गया। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि सुबन्ना पेठ जाकर अपनी माँ और बंधुओं के दर्शन करें, परंतु पिता के देहांत की बात सुनकर उसे निराशा हुई। उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि यशस्वी होकर पिता की प्रशंसा प्राप्त करे, पर वह पूरी न हो पाई। एक बार वह गंजाम जिले में जाकर अपने ननिहाल के रिश्तेदारों को देख आया। पाद टिप्पणी में, गंजाम उड़ीसा प्रांत का एक जिला जिसे बरहामपुर भी कहा जाता है और जहां तेलुगु बोलने वालों की पर्याप्त संख्या है। वहां के लोगों से उसका बड़ा आदर किया। रंगाजम्मा के भाई मर चुके थे, उनके लड़के जीवित थे, उनके चचेरे भाई भी जीवित थे। सब लोगों ने रामचंद्र राजू से सगे बंधुओं का सा व्यवहार किया। उसकी धनाढ्यता की खबर सुनकर सुबन्ना पेठ की जनता ने भी उसका बड़ा आदर किया। लोग कहने लगे, पधारिए पधारिए राजू महोदय, आपने रामेश्वर शास्त्री का नाम रोशन कर दिया, किसी ने कहा, शास्त्री जी के क्या कहने हैं, आखिरी दिनों में उन्हें कुछ कष्ट अवश्य सहने पड़े, परंतु इससे क्या हुआ, चंद्रमा में भी कलंक है ही। दोनों भाइयों का परस्पर स्नेह देखकर लोगों ने धर्मा राव का ही बड़ा आदर किया। कहने लगे, उसे किस बात की कमी है, बड़ा भाई लखपति है। दोनों भाई रंगाजम्मा के पास गए। पिछले 8 महीने पढ़ाई में बिताकर लौटा हुआ धर्माराव पहली बार रंगाजम्मा को अस्वस्थ देख रहा था। रंगाजम्मा का स्वास्थ्य कल की अपेक्षा चिंताजनक था। छाती में श्लेष्म जम गया था और बड़ी पीड़ा हो रही थी। बुखार नहीं उतरा था, ठीक ठीक सुध नहीं थी। रामचंद्र राजू, माँ का इलाज होना चाहिए, क्या करें। धर्माराव, 2 बरस हुए, आस्थान के वैद्य चल बसे, वे बड़े सिद्धहस्त थे। जब तक जीवित रहे इस प्रांत के लोगों को किसी प्रकार की चिंता न थी। आज दवा दारू की कोई व्यवस्था नहीं, अच्छी औषधि मिलती ही नहीं, औषधियाँ कोठी में कहाँ रखी हैं कोई नहीं जानता। अच्छा इलाज कराना हो तो अंग्रेजी इलाज कराना होगा, विजयवाड़ा ले जाना होगा। रंगाजम्मा, मैं विजयवाड़ा नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी अर्थी यहीं उठेगी। मुझे विजयवाड़ा ले गए और मैं वहाँ मर गई तो ही जला कर आओगे, नहीं मेरा शरीर तो सुबन्ना पेट में ही जलेगा, मुझे इलाज की क्या आवश्यकता है। धर्माराव, एक ऐसी बातें कर रही हैं आप, क्या देखते देखते प्राणों को जाने देंगे। जब तक प्राण है चिकित्सा करनी ही होगी, ऐसा न करना आत्महत्या के समान है। रामचंद्र राजू, तुमने BA प्रथम की परीक्षा दी है न। धर्माराव, हाँ, यह प्रश्न अब क्यों। रामचंद्र राजू, तुमने ठीक कहा, पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है। धर्माराव, मेरी बातों का अंग्रेजी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। रामचंद्र राजू, विजयवाड़ा से किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। रंगा जम्मा, बेटा यह सब फिजूल खर्च है, चंद्रा रेड्डी की पत्नी जब बीमार हुई थी तब मैंने देखा कि डॉक्टर लोग कितने लालची होते हैं। सुना है उनका वेतन 1,000 रुपये प्रतिमास होता है, अपनी गाड़ी लेकर आए, कुछ दवा देकर 400 ऐंठ ले गए, ऐसे में तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। धर्माराव, हाँ डॉक्टरों का यही हाल है। रंगा जम्मा, जो हो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की दी हुई ज़मीन का चप्पा चप्पा मेरे बेटे को पहुँचे, मैं उसमें कुछ खर्च करना नहीं चाहती, मुझे मरना ही पड़े तो कोई चिंता नहीं। रामचंद्र राजू, तुम पागल तो नहीं हुई माँ, धन काहे के लिए है, आड़े वक्त काम ना आए तो उसका प्रयोजन ही क्या है, बचा बचा कर उसे किसके हवाले करना है। रंगा जम्मा, तो क्या उसे समुद्र में फेंक देंगे। रामचंद्र राजू, वैद्य को देना समुद्र में फेंक देने के बराबर है। रंगा जम्मा, उस डॉक्टर का वेतन 1,000 रुपये प्रतिमास है, बरस में 12,000 रुपये होते हैं, मेरी जायदाद से बरस में 1,000 की भी आय नहीं होती, आज की कीमतों में 800 रुपये आ रहे हैं, मालगुजारी आदि देने के बाद केवल 400 बचते हैं, अब मैं खाऊंगी क्या और इलाज क्या कराऊंगी। इलाज के नाम पर जायदाद चौपट कर लोगे, जिस डॉक्टर को 12,000 रुपये मिलते हैं उसे हम जैसे गरीब फीस क्यों दें, सो भी अपनी जीविका वाली जमीन बेचकर क्यों दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं हम जैसों से पैसा ऐंठने में डॉक्टर का मन क्यों नहीं सकुचाता। धर्माराव, माँ जी डॉक्टर लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। धर्माराव के माँ जी कहकर पुकारने से रंगाजम्मा को बड़ा सुख मिला। आज तक वह रंगाजम्मा से खुले मन से न बोला था, परंतु आज उसने माँ जी कहकर पुकारा। रामचंद्र राजू चुप हो गया। भोजन के समय धर्माराव घर लौटा। रंगाजम्मा के विवेक पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अनपढ़ रंगाजम्मा को अर्थशास्त्र का इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ होगा, पाठशालाओं के अर्थशास्त्र में प्रायः ये बातें होती ही नहीं। धर्माराव बड़े उत्साह से हवा की तरंगों पर झूमता सा घर पहुंचा। सास के मना करने पर भी अरुंधति ने रसोई बनाई। धर्माराव के आते ही उसके लिए पानी निकालकर उसे बुलाया। स्नान करते समय उसकी पीठ मलने लगी। पीठ मलते समय धर्माराव ने अपने हाथों से अरुंधति के हाथ दबाकर पकड़ लिए। वह हंस पड़ी। पानी का लोटा हाथ में देते समय, पोंछने के लिए तौलिया देते समय, धोती देते समय उनके हाथों का परस्पर स्पर्श होता। अरुंधति लजा जाती। धर्माराव उसे हंसाता रहता था। वह हंसती रहती थी। सावित्री देवी के मुख से मानो आँख नाक सब कुछ अंतर्धान हो गए, बच रहा केवल आनंद। भोजन करते समय सावित्री देवी बाहर आ बैठी। अरुंधति ने पत्तल लगाई। धर्माराव आसन पर बैठ गया और पत्तल लगाते समय उसने अरुंधति को खींचकर अपने पास बिठा लिया। वह बोली, हाय माँ, खाना नहीं परोसना है। धर्माराव बोला, खाना ही तो खा रहा हूँ। यह कहकर उसने अरुंधति का सारा शरीर चूम लिया। अरुंधति गुदगुदी हुई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। चक्र की भांति वह धर्माराव के हाथों में घूम गई। अंत में उसने अपने आप को छुड़ा लिया और दूर से पत्तल पर पानी छिड़कने लगी। धर्माराव बोला, इतनी दूर खड़ी होगी तो क्या मैं वहां नहीं आ सकती? अरुंधति ने कहा, हाँ आ तो सकेंगे, पर धीरज मुझे इस बात का है कि आने में 8 महीने तो लग ही जाएंगे। धर्मराव उसकी ठुड्डी हाथों में लेकर बोला, वह हुई पुरानी बात, अब तुम इतना क्यों बिगड़ती हो? मुझे क्या पता कि तुम मायके में कष्ट सह रही थी, मैंने सोचा था कि तुम मजे में होगी। मुझे पता चलता तो क्षण मात्र में तुम्हारे पास पहुंच न जाता। 8 महीने की बात न करो, अब मैं 8 पल भी तुम्हारा वियोग नहीं सह सकता। अरुंधति ने खाना परोसा, दाल तरकारी और चटनी यही पदार्थ थे। सावित्री देवी घर के पिछवाड़े में बड़े जतन से सिंचाई करके गर्मियों में भी तरकारियां उगा रही थी। धर्माराव, यह चटनी काहे की है? अरुंधति, पहचान लीजिए। धर्माराव, भाई मालूम नहीं, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ और कुछ नहीं। अरुंधति, क्या जानते हैं? धर्माराव, बताऊँ? हमारे गांव के पास रंगापुर है, वहाँ एक लड़की रहती है, उसका नाम मुझे याद नहीं। कहते हैं कि वह लड़की अपने पति के साथ उड़ गई, बस यही बात मालूम है मुझे। तुम उस लड़की का नाम जानती हो? अरुंधति, जानती हूँ, उस लड़की का नाम धर्माराव है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इतने में सावित्री देवी भीतर आईं। उन्हें देखते ही धर्माराव बड़ा भोला बन गया और बोला, माँ छाछ ले आओ। माँ बोली, बेटा परोस क्या मैं रही हूँ? धर्माराव बोला, तो फिर उसी से कह दो कि छाछ ले आए। अरुंधति छाछ उड़ेल रही थी तो धर्माराव ने उस पर छाछ का छिड़काव कर दिया। सारे शरीर पर जूठा छाछ पड़ गया। सावित्री देवी बाहर चली गईं। अरुंधति, अब मुझे फिर से स्नान करना होगा, उस दिन जूठा गुलाब का पानी फेंका था, जूठा छाछ फेंक दिया। धर्माराव, सचमुच सारा शरीर जूठा हो गया। अरुंधति को ऐसा नहीं लगता था, उसे लगता था कि सारा शरीर अमृतमय हो गया है। अरुंधति, मैं स्नान नहीं करूंगी, ऐसी ही रहूंगी। धर्माराव, अर्थात सदा सौभाग्यवती बनी रहो। अरुंधति, हाँ। दोनों एक दूसरे की ओर निहारने लगे। धर्माराव की पत्तल में 2 कौर बच गए थे, पर वह उन्हें खाता न था। अरुंधति छाछ के पात्र को जमीन पर रखती न थी। दोनों कनखियों की भाषा द्वारा कुछ रहस्यमय अर्थ जान लेने में व्यस्त थे। धर्माराव की आंखों में आंसू भर आए, वह हाथ धोकर अपने कमरे में चला गया। अरुंधति भी हाथ पांव और मुंह धोकर कमरे में जा पहुंची। धर्माराव बोला, जाकर खाना खा लो, अब यहाँ क्यों आई हो? अरुंधति, आपको पान सुपारी देने आई हूँ। धर्माराव, पान कहाँ से आ गए? अरुंधति, अभी अभी कोई बेचने लाया था। धर्माराव, शायद अरुंधति के साथ साथ पान भी इस गांव में आ गए हैं। अरुंधति के मुख पर मधुर लज्जा बड़े अनूठे ढंग से झलक जाती थी। लज्जा की वह रेखा अकस्मात ऐसी लगती थी मानो जन्म जन्मांतरों का सीखा हुआ कोई अभिन्न विशेष हो। मेघों की ओट में हो गए सूर्य की किरणों से सफेद आकाश का छोर जब सुनहरे रंग में डूब जाता है और सारस पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उन पक्षियों के सफेद पंखों से मेघ पर खींची लीक जिस प्रकार जगमगाती है, उसी प्रकार अरुंधति का मुखमंडल जगमगा उठता था। धर्माराव ने उस मुख के तेज को प्रथम मिलन के समय ही अनुमान से ताड़ लिया था। रात दिन मधुर तथा दुखमय गाथाओं के कथन में उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता, परंतु इस अवसर पर लाज की वह रेखा अरुंधति के मुख मुग्ध और विनय मधुर मुख कमल पर अभी झलकी और अभी ओझल हो गई। धर्माराव उसे देख कर मंत्रमुग्ध सा खड़ा रह गया। पति की तन्मयता का कारण पत्नी को ज्ञात न था। उसका अनन्य प्रेम पाकर मानो पत्नी के प्राणों के मार्ग में अमृत प्रवाह के भंवर चक्कर काटने लगे। रह रहकर अरुंधति स्वयं पति से लिपट जाना चाहती, पर स्त्री सहज लज्जा उसे रोक रही थी। धर्माराव, मैं अब पान नहीं खाऊंगा, तुम भोजन कराओ, तब दोनों मिलकर खाएंगे। अरुंधति, दिन ढलने से पहले भोजन करने की मेरी आदत नहीं, मायके में पिताजी की पूजा समाप्त होने तक बड़ी देर हुआ करती है। धर्माराव, अब वह पुरानी आदत बदल जाएगी, आज ही उसका श्री गणेश है, तुम भोजन कराओ। अरुंधति, तब तक आप बिना पान खाए रहेंगे? धर्माराव, आज तक बिना तुम्हारे नहीं रहा। अरुंधति, भोजन कराई, वह पान में चूना लगा रही थी। धर्माराव ने चूना निकालकर उसके गाल पर लगा दिया। अरुंधति ने गाल नहीं पोंछा। धर्माराव बोला, गाल पोंछती क्यों नहीं? अरुंधति, पोंछने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा चेहरा जैसा भी हो इससे मुझे क्या? धर्माराव, और मुझे भी क्या? अरुंधति, सचमुच? धर्माराव पान चबाकर अरुंधति को देने लगा। अरुंधति ने उसे नहीं लिया, बोली, मुझे यह जूठन नहीं चाहिए। धर्माराव, कल शाम ही यह बात तुम्हें कहनी चाहिए थी, अब मैं नहीं मानूंगा। अरुंधति, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? दीवार पर एक चित्र लगा था, उसकी ओर संकेत करके धर्माराव बोला, वह करूंगा। अरुंधति के मुख पर मधुर लज्जा की रेखा फिर से झलक गई। उसे देखकर धर्माराव चकित रह गया। अरुंधति बेचैन हो उठी। धर्माराव बोला, वह हेम रेखा है। दिन ढल गया, देवदासी आई। बाहर से उसने पुकारा, भैया। धर्मराव तुरंत दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकला। पति को हड़बड़ाकर उठते देख अरुंधति चकित हुई। अब तक वह पति का सर्वस्व थी, अब किसी अन्य स्त्री का कंठस्वर सुनते ही पति की अधीरता देखकर उसने पूछा, वह कौन है? धर्माराव, गिरिका। अरुंधति को स्मरण हो गया। उसने अपनी अंगूठी देखी, अंगूठी में नीला पत्थर जड़ा था। पति पत्नी बाहर आए। देवदासी अरुंधति की ओर एकटक देखने लगी, फिर बोली, भाभी को प्रणाम। अरुंधति को कुछ नहीं सूझा। उसे लगा, मैं कहाँ वह कहाँ, मैं कहाँ इस प्रणाम की योग्य हूँ। अरुंधति ने अंगूठी की ओर देखा। अंगूठी से तमाल वृक्ष की छाया की भांति, यमुना की तरंग की भांति, कपिला गाय के शरीर की कांति की भांति श्यामल कांति बिखर रही थी। अरुंधति ने कमरे से दो पान लाकर देवदासी के हाथ में रख दिए। देवदासी ने दो पान देने का कारण नहीं पूछा, उन्हें मुट्ठी में बंद कर लिया। भाई बहन बाहर निकल पड़े। अरुंधति ने उसकी ओर देखा। दोनों बाहर जाकर रामेश्वर शास्त्री की बनवाई हुई संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठ गए। गिरिका के पांव पानी में भीग रहे थे। धर्माराव, मेरे लिए तुम कल भी आई थीं? गिरिका, नहीं, कल तुम रंगापुर गए थे ना? धर्माराव, तुमसे किसने कहा? गिरिका, जाते समय तुम्हें मैंने स्वयं देखा था। यहाँ से देखो, रंगापुर का रास्ता दिख रहा है ना? मैंने तुम्हें दूर से देखकर पहचान लिया। धर्माराव, पिछले 8 महीनों में तुम क्या करती रहीं? गिरिका, पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अपना रास्ता तो देख रहे हो, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाते। धर्माराव, मेरा रास्ता आसान है, तुम्हारा कठिन। तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ढूंढना होगा, उस रास्ता का हमें अनुभव नहीं है। गिरिका, यह क्या कहती हो? बस तुम्हारा ही तो भरोसा रह गया है मुझे। तुम ही ऐसी बातें करोगे तो मेरा क्या होगा? भैया, जैसा तुमने कहा था, मैं हर रात सोने के समय तक प्राणायाम करती आ रही हूँ और स्वामी का ध्यान कर रही हूँ, पर स्वामी की आकृति मेरे सम्मुख टिकती नहीं। 2-3 बार टिकी भी तो तुरंत अदृश्य हो गई। भैया, मंदिर में प्रभु के सम्मुख खड़े खड़े मुझे जो सुख मिलता है, घर में नहीं मिलता। धर्माराव, माई, यह विद्या केवल 8 महीने में हस्तगत हो सकती, तो फिर ऋषियों को युगों युगों तक साधना क्यों करनी पड़ती? तुम मुझे भूल जाओ, मान लो मैं नहीं हूँ, तब तुम क्या करोगी? जो करती हो उसी को बार बार करके तुम्हारे प्राण ऊब जाने चाहिए। प्रभु के प्राण भी तब ऊब जाएंगे, उसी समय उस चोर का मन पसीजेगा। प्राणों को उबा देने में वह बड़ा उस्ताद है। गिरिका, बहनोई को जितनी चाहो फटकाने सुनाओ, तुम सुना सकते हो और उन्हें सुनना पड़ेगा। धर्माराव, ये बातें रहने दो, हंसी मजाक रहने दो, यह तो बताओ कि स्वामी कितने दूर आए हैं, फिर कोई स्वप्न आया? गिरिका, तुम्हारे जाने के बाद लगभग 1 महीना हुआ मुझे स्वप्न आया था। धर्माराव, स्वप्न में क्या हुआ? गिरिका, स्वामी बांसुरी बजा रहे थे, गौएं गर्दन उठा उठा कर उनकी ओर देख रही थीं। दूर यमुना नदी बह रही थी, तमाल वृक्ष हवा में डोल रहे थे, स्वामी के श्यामल देह छटा मुझ पर प्रसरित हुई। उस साये में दुबकती दुबकती मैं स्वामी के पास जा पहुंची। पिछली बार मुझे देखकर स्वामी भाग खड़े हुए थे, इसी से अब की बार मैं उनकी आंख बचाकर जा पहुंची। मुझे उन्होंने नहीं देखा, पास जाकर मैंने उनका उत्तरीय छू लिया। उस स्पर्श से मुझे अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, मेरा हृदय धड़कने लगा, शरीर में रक्त अत्यंत वेग से दौड़ने लगा। बस इतने में मैं जाग उठी, देखा तो स्वामी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर रोती रही, फिर मुझे नींद नहीं आई। धर्माराव, धीरज धरो, अभी कुछ देर है, संभव है कई बरस लग जाएं। आज तक जो मार्ग बताया था वही ठीक है, स्वामी को तुमसे बोलना होगा, स्वप्न में नहीं, जागते में ही वे तुमसे बोलेंगे। गिरिका निराश हो गई, वह रो रही थी। धर्माराव उसकी ओर निहार रहा था। गिरिका कहने लगी, भैया, क्या मेरे नाथ कभी मुझ पर कृपा करेंगे? पता नहीं मैंने कितनी रातें जाग जाग कर बिताई हैं, क्या वे स्वयं नहीं जानते? मैं जितने कष्ट सह रही हूँ वे शायद पर्याप्त नहीं हैं। एकादशी और द्वादशी को दिन भर मैं एक बार भोजन करती हूँ, अष्टमी और नवमी को एक ही बार खाती हूँ, अब तो उन तिथियों में निराहार रहूँगी। भैया, बताओ और क्या करूँ? क्या एक बार की अपना गला काट लूँ? वह तो मैं आसानी से कर लूँगी, स्वामी की कृपा न हो तो मेरा यह जीवन किस काम का? अभी अभी भाभी को देख आई हूँ, उनके लिए तुम प्रत्यक्ष स्वामी हो, मैं उन पर नहीं जलती, पर मेरा कोई नहीं है, पता नहीं कब मेरे पतिदेव मुझ पर कृपा करेंगे। धर्माराव, क्षत्रिया के पद तुमने कितने सीख लिए हैं? गिरिका, माँ को जितने पद आते थे सब उसने मुझे सिखा दिए। धर्माराव, मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी जिसमें नायिका भेद और उनके लक्षण आदि का वर्णन है, पुस्तक तुमने पढ़ी? गिरिका, पढ़ी तो है पर ठीक ठीक समझ में नहीं आया, कल रात आ जाऊं, मुझे समझाओगे, तुम्हें अड़चन तो नहीं होगी? धर्माराव, प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ा करो, कल से आने लगो। मैं 3 महीने यहीं रहूँगा, जो पद तुमने सीखे हैं उनके भिनाई का भेद बताऊँगा। 3 महीने में तुम्हें सब कुछ सीख लेना होगा। गिरिका, आज से 10 दिन के भीतर स्वामी कम से कम स्वप्न में ही मुझसे बोल लेंगे तो ठीक, नहीं तो किसी रात इस तलैया में गिर पड़ूंगी। मेरी मृतदेह से ही स्वामी का नौका उत्सव संपन्न होगा, लगता है मेरा ऐसा ही अंत होने वाला है। गिरिका फिर रोने लगी। धर्माराव बोला, चलो स्वामी से पूछ लेंगे, और उसे मंदिर में ले गया। वहां पहुंचकर गिरिका बेसुध सी हो गई, धर्माराव भी तन्मय हो गया। दोनों मंदिर से बाहर आए। घर जाते जाते गिरिका बोली, पूछा क्यों नहीं? धर्माराव बोला, भूल गया। रात बहुत बीत चुकी थी। गिरिका को उसके घर छोड़कर धर्माराव घर लौटा। रुंधति उसकी राह देख रही थी। धर्माराव उसे अपनी भुजाओं में उठाकर भीतर ले गया। बाहर घटाटोप अंधेरा छा गया। दूसरे दिन रंगा जम्मा का स्वास्थ्य और बिगड़ा। रात भर नींद नहीं आई, बुखार नहीं उतरा। गांव का नाई और 2 पुजारी आकर देख गए, कुछ दवा दारू करने लगे। बोले, 1 सप्ताह के बाद ही रोग को परख हो सकेगी। रामचंद्र राजू अपनी माँ से कहे बिना ही एक डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने कुछ औषधियाँ मंगाने का आदेश दिया और इंजेक्शन देकर चला गया। 1-1 घंटे के बाद बुखार देखना, नोट कर लेना, घंटे घंटे में दवा देना, यह सब करने के लिए वहाँ एक व्यक्ति को रहना पड़ता था। रंगा जम्मा जिद कर बैठी कि पानी मिली हुई कोई भी औषधि नहीं लूँगी, अतएव गोलियाँ दी जाने लगी। दूसरे दिन धर्माराव, रामचंद्र राजू रंगा जम्मा के पास बैठे थे। रंगा जम्मा, बेटा एक ऐसे डॉक्टर हैं, इतने बड़े लोग कहीं पतलून पहनते हैं, देखने में आदमी अजीब नहीं लगता? रामचंद्र राजू, माँ तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है, चुपचाप लेटी रहो। रंगा जम्मा, मुँह में सिगरेट रख कर ही वह मेरे पास चला आया, तुमने उससे सिगरेट फेंकने को क्यों नहीं कहा? रामचंद्र राजू, वे बड़े लोग हैं, साहबों की तरह रहते हैं। रंगा जम्मा, मैं बड़े लोगों को नहीं जानती, जमींदार कृष्णम नायडू ने कभी ऐसा किया था? ये डॉक्टर उनसे ही बड़े हैं, जमींदार कितने सच्चे भक्त थे। रंगा जम्मा की एक एक बात अर्थ से ओतप्रोत लग रही थी। आज धूम्रपान गौरव की निशानी बन गया है। बड़े लोगों का अर्थ महान गुणों से संपन्न व्यक्ति नहीं, बड़ा वेतन पाने वाला व्यक्ति हो गया है। रंगा जम्मा, ये डॉक्टर नाड़ी क्यों नहीं देखते, केवल इधर उधर के प्रश्न पूछकर रोग का पता कैसे लगता है? नाड़ी देखकर और शरीर के तत्व को पहचान कर तदनुरूप औषधि दी जाती है, केवल ऊपरी चिन्ह देखकर दवा देने से कुछ का कुछ नहीं होगा। रामचंद्र राजू, माँ इनकी चिकित्सा का ढंग ही अलग है, नाड़ी देखे बिना ही इन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। रंगा जम्मा बोली, होता होगा, फिर चुप रहीं, आगे उनसे बोला न गया। रामचंद्र राजू ने अपने बच्चे का नाम रामेश्वर शास्त्री राजू रखा था। बच्चा दादी के पास आया, वह अत्ता अम्मा बाबा इन तीनों शब्दों का उच्चारण कर सकता था। सुवर्णापीठ आकर मामा शब्द ही उसने सीख लिया। रंगा जम्मा 8ों पहर अपने पोते के मुंह से शब्द कहलवाने में व्यस्त रहती थी, परंतु आज उनमें शक्ति नहीं रही। उन्होंने केवल बच्चे को अपने पास बैठा लिया। शाम को धर्माराव रंगा जम्मा के यहाँ था। देवदासी उससे मिलने गई। धर्माराव उस समय रामचंद्र राजू से कुछ बातें कर रहा था। देवदासी को देखते ही वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। रामचंद्र राजू भौंचक्का रह गया। रंगा जम्मा ने देवदासी को देखा, अपने पुत्र से कहने लगी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जानते हो वह लड़की कौन है? तुम्हारे पिताजी ने रत्नगिरी नामक वेश्या को रख लिया था, यह लड़की उसी की बेटी है। रामचंद्र राजू ने पूछा, धर्माराव अचानक क्यों उठकर चल दिया? रंगा जम्मा बोली, उन दोनों का वृतांत बड़ा विचित्र है, किसी के समझ में नहीं आता, दोनों भाई बहन हैं। पिछले दिनों नए जमींदार के राजतिलक के समय एक विचित्र घटना हुई थी। उन्होंने देवदासी को नाचने के लिए बुलाया, देवदासी ने इनकार किया। जमींदार के लोगों ने उसे जबरदस्ती ले जाना चाहा। धर्माराव ने प्रतिरोध करके कहा कि चाहे प्राण चले जाएं पर देवदासी वहां नहीं नाचेगी। उसकी बात सुनकर जमींदार के लोग चुप रह गए। रामचंद्र राजू, धर्माराव बड़ा अच्छा आदमी है, देवदासी कैसी है? रंगा जम्मा, मैं उससे कई बार बातें कर चुकी हूँ, वह भागवत कंठस्थ कर चुकी है, बोलते बोलते आपे से बाहर हो जाती है, धर्माराव को भाई मानती है, बड़ी भक्तिन है, मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों में वह वेणुगोपाल। रंगा जम्मा आगे कुछ न बोल सकी, मुंह से शब्द बड़ी कठिनाई से निकल रहे थे। रात को बड़ी देर से धर्माराव गिरिका के साथ घर जा रहा था। रास्ते में रामचंद्र राजू दिखाई दिया। धर्माराव ने उससे कहा, भैया माँ जी ने इस लड़की का परिचय तो तुम्हें दिया ही होगा, इसका नाम गिरिका है। फिर उसने देवदासी से कहा, गिरिका ये रंगा जम्मा के पुत्र हैं, हम सबके बड़े भैया, इनका नाम रामचंद्र राजू है। गिरिका ने रामचंद्र राजू को देखा। राजू ने कहा, सुना है कि तुम्हारा नाम देवदासी है। गिरिका, भैया मुझे गिरिका ही कहते हैं। रामचंद्र राजू, भैया ही न कहो, कहो कि दोनों भाई तुम्हें गिरिका ही कहते हैं। गिरिका और धर्माराव हंस पड़े, फिर दोनों आगे चले। रात को रामचंद्र राजू ने अपनी पत्नी से कहा, रथंतरी तुम्हें एक बात बताऊं, इस गांव में मेरे पिताजी की उपपत्नी की लड़की देवदासी रहती है, वह कल यहाँ आएगी। जब तक हम यहाँ रहें तुमसे फूल फल आदि देती रहना, श्रद्धा से दिया करना। दूसरे दिन रामेश्वर शास्त्री का श्राद्ध था। धर्माराव ब्राह्मणों को लिवाने रंगापुर गया, राज्य लक्ष्मी के यहाँ भी गया। उसे देखते ही राज्य लक्ष्मी ने चटाई बिछाकर बिठाया। धर्माराव, अरुंधति ने कहा है कि उसने आपके पास चंद्रहार रखा था, उसने हार मंगाया है। राज्य लक्ष्मी, क्या वह तुम्ही से काम काज करा रही है, इतनी चतुर बन गई है। धर्माराव हंस पड़ा। राज्य लक्ष्मी, भैया तुम्हारे सास ससुर निरे राक्षस हैं, अरुंधति को उन्होंने बड़े कष्ट दिए, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे यहाँ से ले गए। तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सुख में गृहस्थी एक बार देखना चाहती हूँ। राज्य लक्ष्मी ने चंद्रहार लाकर दिया। धर्माराव ने उसे गले में पहन लिया। राज्य लक्ष्मी, जोड़ के पास हार टूट गया था, मैंने सुनार को देकर उसे फिर से जुड़वाया है, अरुंधति से कह देना। धर्माराव लौटने लगा। राज्य लक्ष्मी उसे ठहराकर घर के पीछे से कुछ भाजी तरकारी ले आई। धर्माराव के ना कहने पर भी उसने सानुरोध तरकारी उसे हवाले कर दी। धर्माराव घर पहुंचकर संध्या वंदन आदि समाप्त करके बैठ गया। ब्राह्मण आए। इतने दिन बाद पितृश्राद्ध के समय उसकी पत्नी को अग्नि ले जाने का अवसर मिला था। धर्माराव इस पर प्रसन्न हुआ। यहाँ की अर्चना समाप्त होने के उपरांत रामचंद्र राजू ने अपने यहाँ ब्राह्मणों की अर्चना की, उन्हें दक्षिणा दी। उस दिन संध्या समय रामचंद्र राजू का नाम चहुं ओर गूंज उठा। घर में उस दिन क्षीरान्न बना। रंगा जम्मा के मना करने पर ही बहू ने क्षीरान्न चखाया। धर्माराव के घर से श्राद्ध में बने हुए पदार्थ ले जाकर रामचंद्र राजू के घर वालों ने खाया। रंगा जम्मा फिर से पितृशेष के नाम पर क्षीरान्न खा गईं। उस दिन उन्हें बड़ा आनंद हो रहा था। रत्नगिरी भी हर श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को बुलाकर चावल दाल आदि दिया करती थी। धर्माराव के घर में भोजन समाप्त होने पर ही रत्नगिरी और देवदासी भोजन किया करती थी, इसीलिए उनके घर बड़ी देर से भोजन होता था। श्राद्ध के दिन देवदासी मंदिर नहीं जाती थी, सो धर्माराव के घर भी नहीं आई। श्राद्ध के दिन हरिया पता नहीं कहाँ से धर्माराव के घर आ धमकता था। सावित्री देवी उसे बड़े खिलाती थी। वह बड़े खाता और कुछ अपनी माँ को देने के लिए मांग कर ले जाता। उस दिन संध्या समय वह आया। धर्माराव और रामचंद्र राजू बाहर चबूतरे पर बैठे थे। हरिया नए व्यक्ति को देखकर धर्माराव से बोले बिना ही घर के भीतर चला गया। उसे देखते ही अरुंधति घबरा गई और भीतर दौड़कर सास से कहने लगी, वह क्या है। हरिया हवा में झूमने वाले सांप की भांति चला आ रहा था। सावित्री देवी उसे देखकर हंसने लगी और बोली, घबराओ नहीं, वह मंगा का लड़का है, तुम्हारा देवर। अरुंधति हरिया को बड़े गौर से देखने लगी। रामचंद्र राजू ने उसे भीतर जाते देखा। राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसे स्मरण हो आया कि यहाँ से उसके जाते समय हरिया 5-6 वर्ष का था। आज वह पहले की अपेक्षा बहुत ऊंचा था, परंतु उसमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बड़े खाकर हरिया बाहर आया और धर्माराव को देखता हुआ जाने लगा। धर्माराव ने सीटी बजाई। हरिया को बुलाने का उसका यही ढंग था। हरिया पीछे की ओर देखकर जाने लगा। धर्माराव ने फिर से सीटी बजाकर उसे बुलाया। रामचंद्र राजू ने उसे कहा, उसे पकड़ लाओ। धर्माराव बोला, वह हाथ नहीं आएगा, मैं उसके बराबर दौड़ नहीं सकता, ऊपर पंछियों को देखता हुआ दौड़ता है। हरिया पास आ गया। धर्माराव ने रामचंद्र राजू की ओर संकेत करके पूछा, इन्हें नहीं जानते। हरिया ने नकारार्थक सिर हिलाया। धर्माराव बोला, यह रंगा जम्मा के पुत्र हैं, हमारे बड़े भाई। हरिया बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। फिर उसने उस कहकर फूंकने की आवाज़ की। यह इस बात की सूचना थी कि उसकी समझ में आ गया है। फिर वह बोला, भाई। धर्माराव ने सिर हिलाया। हरिया वहाँ से चंपत हुआ। दोनों भाइयों में बड़ी देर तक पिता के संबंध में बातें चलती रहीं। पिता के प्रति दोनों के मन में अपार आदर था। बड़ी देर तक दोनों बैठे रहे। इतने में कबीर देवदासी को साथ ले आया। धर्माराव बोला, भैया बहन को पढ़ाना है, अब मुझे आज्ञा दो। रामचंद्र राजू ने गिरिका का हाथ पकड़कर कहा, माई। गिरिका बोली, भैया। अरुंधति और गिरिका सहपाठिनी बन गई, परंतु अरुंधति गिरिका की तुलना में आगे न बढ़ सकी। उस दिन धर्माराव ने वासक सज्जिका के लक्षण समझाए। जो पुस्तक पढ़ी जा रही थी वह थी भानु मिश्र की रसमंजरी। वासक सज्जिका के लक्षण सुनते सुनते गिरिका की आंखें विस्फारित हो गईं और उनमें दिव्य ज्योति झलकने लगी। अरुंधति लगातार उसी को देख रही थी। आधी रात बीती। गिरिका बोली, स्वामी कब आएंगे। उसकी तन्मयता देखकर धर्मराव ने पुस्तक बंद कर दी और कुछ प्रार्थना श्लोक पढ़कर पाठ समाप्त किया। फिर उसने कबीर से कहा, गिरिका को ले जाओ। तन्मयता की स्थिति में गिरिका को कबीर बड़ी सावधानी से चलाता हुआ ले गया। अरुंधति दरवाजे तक उसे पहुंचाने गई और उसी की ओर टकटकी लगाए हुए बहुत देर तक खड़ी रही। जब वह देर तक नहीं लौटी तो धर्मराव स्वयं उसकी खोज में द्वार के पास जा पहुंचा और उसकी मनःस्थिति का अनुमान करके मन ही मन हंसता हुआ उसे भीतर ले आया। पितृश्राद्ध का दिन था, पति पत्नी अलग अलग सो गए। धर्मराव चटाई लगाकर बाहर सो रहा था। अरुंधति को नींद नहीं आती थी। रात के 3 पहर बीत चुके थे। गोपाला जिर करदमे विहरसे विप्राध्वे लज्जसे, कर्म कर कर के जिनके शरीर धर्म में भीगे हों उनकी ओर गिरधर गोपाल देखते तक नहीं, परंतु इस वेश्या कन्या के मन में आकर अड्डा जमाए हुए हैं। आहा, क्या भाग है देवदासी के। अरुंधति को लगा कि गिरिका भगवान की राह देखती अब भी जाग रही है। उसने पति को जगाकर कहा, गिरिका अब क्या कर रही होगी भला, हम चलकर देखा आए। धर्मराव बोला, हमें इस समय जाकर द्वार नहीं खटखटाना चाहिए। वह समझेगी सचमुच भगवान ही आए हैं। उसकी प्रतीक्षा यूं ही बनी रहे यही अच्छा है, उसमें भंग पड़ेगा तो उसका मन विकल हो जाएगा। अरुंधति, गिरिका बड़ी भाग्यवान है, सचमुच उसका जीवन धन्य है। धर्मराव, तुम भी क्या कम हो, गिरिका की मनःस्थिति की कल्पना में ही इतनी तल्लीन हो रही हो। अरुंधति, मेरा मन तो आप ही पर केंद्रित है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता। धर्मराव, कहीं नहीं जाता इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है क्या। अरुंधति, आज रात को आपका स्पर्श निषिद्ध है, नहीं तो ऐसी बात के उत्तर में। धर्मराव फिर सो गया। अरुंधति सोचने लगी, जिस प्रकार भगवान ने गिरिका को अपनाया उसी प्रकार पतिदेव ने उसे स्वीकार कर लिया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसी अद्भुत शक्ति है। दूसरे दिन रंगा जम्मा के प्राणों पर बन आई। पड़ोस की स्त्रियाँ इकट्ठी हुईं, टीका टिप्पणी होने लगी, हाय ऐसी बीमारी में कोई बड़े भी खाता है, बड़े खाकर ही इनकी यह दशा हुई है। जो हो, उनका श्वास रुकने लगा, मुंह से बात नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने आकर फिर देखा, इंजेक्शन दिया और दूसरे दिन आने का वचन देकर चला गया। रामचंद्र राजू ने डॉक्टर को 300 रुपये दिए। डॉक्टर ने उन्हें लापरवाही से जेब में रख लिए, मानो वे 3 रुपये हों। फिर उनकी गाड़ी नहीं रुकी, मानो उड़ गई। रंगा जम्मा संध्या समय फिर से बोलने लगी। सबने सोचा अब स्वास्थ्य सुधरने लगा है। 10 मिनट तक ठीक ठाक बोलती रहीं। इसके उपरांत यो ही हाथ फेरना, अकारण हाथ पाँव हिलाना, जहाँ कोई व्यक्ति न हो वहाँ किसी को खोजना, बहकी बातें करना आदि लक्षण दिखने लगे। लोगों ने कहा, सन्निपात हुआ है, वह अंग्रेजी दवा से कम होने का नहीं, कोई अच्छी देशी दवा चाहिए। सावित्री देवी ने रंगा जम्मा के हाथ पांव छू कर देखे, वे ठंडे पड़ रहे थे। सावित्री देवी ने कहा, सिंह प्रतिपालन नामक औषधि मिल जाए तो शरीर में उष्णता आ सकती है। पुजारी ने आकर औषधि पिलाई, पर औषधि मुँह के बाहर निकल आई। रंगा जम्मा की दृष्टि में भी एक प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया था। रात बहुत बीत गई थी, अंधेरा छा रहा था। छोटा रामेश्वर शास्त्री सहसा जागकर शोर मचाने लगा। रथंतरी ने उसे बहुत समझाया। धर्माराव, अरुंधति, सावित्री देवी, मंगा, रत्नगिरी सबके सब उपस्थित थे। रंगा जम्मा ने बैठने का प्रयत्न किया, बेटे ने सहारा देकर उन्हें बिठाया। लोगों ने बहुत मना किया, पर इतने में उनका सन्निपात जाता रहा। सुधि आई, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। इस बीमारी में एक बार की उठ बैठना और भलीभांति बातें करने लगना, यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। रंगा जम्मा ने अपनी साड़ी बदलने का आदेश दिया। बक्से में एक अच्छी साड़ी थी, उसे लाकर पहनाने को कहा। साड़ी पुरानी और बहुत मूल्यवान थी। रामेश्वर शास्त्री जब जीवित थे उन दिनों रंगा जम्मा वह साड़ी पहना करती थी। उसे पहनते ही शास्त्री जी कहा करते, रंगा जम्मा बड़ी सुंदर है। रंगा जम्मा ने वह साड़ी पहनने की इच्छा प्रकट की तो सबके सब सिर पिटाए, परंतु रामचंद्र राजू ने कहा, वह साड़ी हमारे किस काम आएगी, माँ की अंतिम इच्छा है, पहना दो। किसी ने कहा, अंतिम इच्छा क्यों कहते हो, माँ जी अवश्य बचेंगी। साड़ी पहनाई गई, बक्से से कस्तूरी लाकर साड़ी पर मली गई। सारे शरीर में सुगंध द्रव्यों का लेप किया गया, साफ सुथरे वस्त्रों से सेज सजाई गई। यह सब देखकर लोग विस्मित हो रहे थे। सारा प्रबंध होने के बाद रंगा जम्मा सेज पर लेट गईं और सबको दूर जाने का आदेश देकर हंस पड़ीं। उसी हंसी में मृत्यु देवता का साक्षात्कार हुआ। उस हंसी को सुनकर लोग समझ गए कि यह भी एक प्रकार का सन्निपात है। रंगा जम्मा का सन्निपात यथापुरु शुरू हुआ। सारे कमरे में सुगंध फैल गई। किसी को ही प्रतीत नहीं हुआ कि कोई मरणासन्न व्यक्ति पास में है। बक्से में धर्माराव ने अगरबत्तियां देखी, उसने उन्हें जलाया। आधी रात हो चुकी थी। कोठी में नगाड़े बज रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं घर के भीतर दौड़ लगा रही थी। सबके प्राणों को सुख की अनुभूति हो रही थी। रंगा जम्मा ने कांपते स्वर में कहा, देखा। रामचंद्र राजू उनके पास आकर पूछने लगा, क्या है माँ? रंगाजम्मा पागलों की भांति देखते हुए बोली, देख लिया? राजू ने फिर पूछा, क्या देखूं, वहां क्या है? रंगाजम्मा पागल से हंसकर अपनी साड़ी संवारने लगी। बहू उनके पास आ बैठी और पूछने लगी, क्या देखने को कहती हैं? सास बोली, वे आए हैं। रामचंद्र राजू ने पूछा, माँ कौन आए हैं? रंगाजम्मा फिर से हंस पड़ी, बैठने का प्रयत्न करने लगी। राजू उन्हें संभालने लगा। रंगाजम्मा बोली, उन्हें बैठने को कहो, उन्हें बिठाओ। राजू ने फिर पूछा, कौन है जिनको बिठाना है? रंगाजम्मा हंसती हुई सेज पर लेट गई। रामचंद्र राजू दूर जा खड़ा हुआ। माँ फिर से उठने लगी। बेटे ने फिर संभाला। माँ बोली, देखो देखो वे आए हैं। बेटे ने पूछा, माँ कौन आए हैं? तुम्हारे पिताजी, वह देखो। यह कहकर रंगाजम्मा सेज पर पड़ गई। जब से रामचंद्र राजू ने होश संभाला, उसके मन में अपने माता पिता के प्रति एक विचित्र भावना रहती आई थी। उसकी कल्पना थी कि वे दोनों रति और मदन हैं, श्रृंगार रस के अधिदेवता हैं। उनका विश्वास था कि प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। बचपन में पिताजी उस पर 100 जान से मरते थे, उसे रामचंद्र कहकर पुकारते थे। कहते थे, क्षत्रियों का राज्य देश से उठ गया है, इसलिए मैं अपने लड़के को धनुर्विद्या सिखाऊंगा, अथर्ववेद सिखाऊंगा, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग और उपसंहार सिखाऊंगा और उसे महान धनुधारी बनाऊंगा, तभी कृतयुग धर्म की पुनः स्थापना होगी। पिता की गोद में बैठकर वह उनसे पुराण गाथाएं सुना करता था। उसके मन में क्षत्रिय सुलभ साहस का प्रदर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। जब वह सयाना हुआ तो उसकी माँ ने अपने ब्याह का वृतांत उसे कई बार रोचक ढंग से सुनाया। रामचंद्र राजू अपने माता पिता को वासवदत्ता और उदयन के समान लोकाराध्य दंपति मानकर निरंतर अपने मन में उनकी आराधना करने लगा। वह घर छोड़कर गया था तो इसी संकल्प से कि देश को जीत कर राज्य का पालन करूं, परंतु घर छोड़ने के उपरांत उन कल्पनाओं की निस्सारता उसकी समझ में आ गई। पिता से उसने जो पुराण गाथाएं सुनी थी, उनका आज के संसार से कोई संबंध न था। धीरे धीरे आज के जगत का रहस्य उसकी समझ में आ गया। फिर भी उसके मन में माता पिता के प्रति जो अपार श्रद्धा थी, उसमें कोई कमी नहीं हुई। वह सोचता था कि शिव जी का धनुष भंग करके श्री रामचंद्र जी ने सीता से ब्याह रचाकर जो उत्कृष्ट कार्य किया था, वही कार्य उसके पिता ने उसकी माँ से विवाह करके किया। उस विवाह की प्रत्यग्रता उसके मन में कभी तिरोहित नहीं हुई। उसकी दृष्टि में उसकी माँ सीता देवी से किसी भी बात में कम न थी। आज माँ की मरणासन्न स्थिति में रामचंद्र राजू का उद्वेग उसके हृदय में उथल पुथल मचाने लगा। माता पिता के प्रति उसकी समस्त भावनाएं हृदय कपाट को छेदने लगें। ओहो, मरते समय माँ को पिताजी के दर्शन हुए। नित्य वधु की भांति मरणशैया पर माँ समस्त सुगंध द्रव्यों से सुसज्जित हैं। पिताजी को तो जो साड़ी बहुत पसंद थी, वही साड़ी माँ ने पहन रखी है। उसकी इस वेशभूषा से पिताजी के हृदय में मधुर भावनाओं का उदय हुआ होगा। इन सब कल्पनाओं में व्यस्त रामचंद्र राजू एक पवित्र भावना के जगत में विचर रहा था। उधर रंगा जम्मा ने पति को गले लगाने के बहाने अपने हाथ फैलाए, फिर उन्हें अपनी छाती पर बांध दिया और अधरों पर मंद हास बिखेर कर आँखें मूंद ली। मरण के लक्षण जानने वाली एक बुढ़िया बोली, हाय रे, नीचे उतारो, नीचे उतारो। रामचंद्र राजू के साथ साथ धर्मराव ही पलंग के पास जा पहुँचा। राजू बोला, तुम मत छुओ। धर्मराव ने एक न मानी। दोनों ने रंगाजम्मा को पलंग से उतार कर जमीन पर लिटा दिया। राजू ने रंगाजम्मा के मुंह में तुलसी पत्र रखा और पानी की बूंदें डाली। रंगाजम्मा पानी निगल गई। प्राणों के उत्क्रमण तक रामचंद्र राजू माँ के कान में नारायण नारायण का लगातार जप करता रहा। रंगाजम्मा के लिए जोर से रोने वाला कोई न था। उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। जब से रंगाजम्मा अपना पीहर छोड़ आई थी, तब से उन्होंने पति ही में भगवान के दर्शन किए थे। पति पर विपदा आई तब भी वह पति ही के पास रहीं। पति के चल बसने के बाद भी अपने मन में पति को बांध लिया। अंत में मरणासन्न सन्निपात की दशा में भी पति के ही दर्शन किए। सीता देवी और रंगाजम्मा ने एक ही प्रकार की मूर्ति का ध्यान किया। वह मनोहर मूर्ति जिसके नाभि तक यज्ञोपवीत था, जिसका वक्षोभाग विशाल था, जिसके अधरों पर मंद हास नाचता था, जिसके हाथ में धनुष था। रंगाजम्मा को पलंग से उतारकर धर्माराव बाहर आया। वह कृष्णाष्टमी की रात थी, चंद्रोदय हो रहा था। अर्धाकृति चंद्रमा आधी उपयोग में लाई गई सुगंध द्रव्य की काली टिकिया की भांति उदित हो रहा था। रंगाजम्मा और रामेश्वर शास्त्री ने जिस सुगंध द्रव्य को हजारों बार उपयोग किया था, वही द्रव्य मानो आधी टिकिया की आकृति में फिर से उनकी आत्माओं के समागम की वेला पर आ पहुंचा। चांदनी और अंधेरा संभाग में मिलजुल कर सुखद लग रहे थे। किसी किसी की मृत्यु मृत्यु जैसी नहीं रहती। घर में सन्नाटा अवश्य था, पर इस बात का भान नहीं होता था कि अभी अभी यहाँ किसी की मृत्यु हुई है। रामचंद्र राजू बैठा बैठा हंस पड़ा। रथंत्री बोली, हंसते क्यों हैं? राजू कहने लगा, मेरे पिताजी से ब्याह करके माँ भाग्यवान बनी, या माँ से ब्याह करके पिताजी भाग्यवान बने। सावित्री देवी ने अरुंधति और धर्माराव को अपने घर भेज दिया। धर्माराव जाना नहीं चाहता था, परंतु रामचंद्र राजू ने उसे समझा कर भेज दिया। पति पत्नी ने घर जाकर स्नान किया, धर्माराव अलग जाकर सो गया। अरुंधति बोली, क्या बात है, आज छूना नहीं चाहिए? धर्माराव ने उत्तर दिया, शायद धर्मशास्त्र के अनुसार मुझे अशुचि लगी है। तुम अपने बालों को ठीक तरह पोंछ लो, आधी रात को स्नान किया सो कहीं कल तक सर्दी जुकाम न हो जाए। अरुंधति अपनी साड़ी से बहुत देर तक लंबे लंबे केशों को पोंछती और सुखाती रही। सवेरा होते ही रंगा जम्मा की मृत्यु की खबर गांव भर में फैल गई। लोग झुंड के झुंड बनाकर जमा हुए, कहने लगे, ओहो, ऐसा लगता ही नहीं कि रंगा जम्मा चल बसी है, वह तो मुस्कराती हुई मर गई। कितना उदात्त जीवन था उसका, महारानी की तरह मरी है। सबके साथ नागन्ना शेट्टी भी आया। लौटते लौटते उसने धर्माराव से पूछा, बेटा एक बार मेरे घर चलोगे? धर्माराव शेट्टी के साथ हो लिया। शेट्टी ने एक प्रॉमिसरी नोट पर वसूली लिख दी और उसे धर्माराव के हवाले कर दिया। धर्माराव बोला, यह क्या है? शेट्टी ने जवाब दिया, भैया तुम्हारा माल लेकर मैं क्या करूँगा? रंगा जम्मा स्वर्ग सिधारी है, इस प्रोनोट की 52 रुपये उसने 6 महीने पहले ही चुका दिए थे। उसी के कहने पर मैंने तुम्हें 100 रुपये उधार दिए थे, कर्ज वसूल हुआ है सो तुम यह नोट वापस ले लो। यह सुनकर धर्माराव का गला भर आया। आधा फटा प्रोनोट उसने जेब में रख लिया और उमड़ते दुख को बड़ी कठिनाई से भीतर दबाता हुआ रंगा जम्मा के घर जा पहुंचा। रंगापुर से आकर एक शास्त्री जी ने दाह संस्कार करवाए। 16 आने चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। दाह के समय 100 रुपये की गाय खरीद कर रामचंद्र राजू ने दान दिया। दाह संस्कार में 500 रुपये खर्च हुए। अपर कर्म बड़े पैमाने पर होने वाला था। यह खबर चारों ओर ब्राह्मणों तक फैल गई, मानो हवा पर ही सवार होकर दूर दूर जा पहुंची हो। अपर कर्म बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। रामचंद्र राजू ने 10,000 रुपये खर्च किए। जहाँ जहाँ गोदान की विधि पूरी करनी थी, राजू ने प्रत्यक्ष गोदान ही किया। गोदान के बदले रुपये देने की पद्धति उसने नहीं अपनाई। रामचंद्र राजू संस्कृत भाषा से परिचित था, स्मृतियों का जानकार था, इसलिए उसने अपर कर्म में कोई कमी न रहने दी। धर्माराव की बहनें और जीजा आ गए। रामचंद्र राजू ने 2 दिन हरि कीर्तन करवाया, बाजार में नाटक का आयोजन किया। लोग कहने लगे कि जमींदार के राजतिलक की अपेक्षा रंगा जम्मा का अपर कर्म अधिक धूमधाम से हुआ है। अपर कर्म के अंतिम दिन रामचंद्र राजू और धर्माराव एक साथ बैठे थे। रामचंद्र राजू आज तक बड़े उत्साह से अपर कर्म करता आया था, परंतु कर्म के समाप्त होते ही वह धर्माराव से लिपट कर जार जार रोने लगा। धर्माराव ने उसे बहुत समझाया। राजू कहने लगा, भैया देखो होनी कितने विचित्र है, कहाँ गंजाम जिला, कहाँ सुबन्ना पेठ, पिताजी का वहाँ जाना, माँ का उन पर अनुरक्त होना, मेरा जन्म होना, विभिन्न कुल वाले होकर भी हम दोनों का भाई बनना, इतनी दूर आकर मेरी माँ के कुल की रक्षा कैसे हुई, माँ का शील देखो, पातिव्रत्य देखो, दिव्य मूर्ति देखो, किसी अवतार के इतिहास जैसा नहीं लगता? यह कहकर उसने ठंडी सांस ली। रात का समय था, शुक्ल पक्ष के प्रारंभिक दिन थे। धर्माराव ने आकाश की ओर देखा, चंद्रमा अस्त हो रहा था। अस्तंगत चंद्रमा पर काले बादल छाए थे। पश्चिमी आकाश में 10-11 काले काले बादल जहाँ तहाँ निश्चल दिख रहे थे। अस्तंगत चंद्रमा के प्रकाश में उन मेघों के मध्य भाग चमक उठे। समुद्र में जब भाटा होता है तो नदी और समुद्र के संगम के स्थान पर रेत और मिट्टी के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। ठीक उसी समय पश्चिम का आकाश दिखाई पड़ा। वह एक मधुर लीला थी, चांदनी भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, दोनों की अनूठी संधि वेला थी। कुछ देर बाद अंधेरा चारों ओर पुत गया, पश्चिमाकाश में प्रकाश की रेखाएं भी अदृश्य हो गईं, मानो जगत में रसज्ञता का संपूर्ण लोप हो गया हो। रात को धर्माराव देर से घर लौटा। अरुंधति उसे फटकारने लगी, हम दोनों घर में अकेली भयभीत बैठी हैं, आप बड़ी देर तक सैर सपाटे करके लौटते हैं। ननदे और उनके पतिदेव आज सवेरे चले गए, तब से घर काट खाने को दौड़ता है। धर्माराव ने कहा, यह तो नई बात हुई, मैं तुम्हारी फटकार आज तक नहीं जानता था, सोचता था कि तुम केवल सुख लेकर आई हो, अब देखता हूँ कि साथ साथ कुछ और भी ले आई हो। रंगा जम्मा की मृत्यु से धर्माराव को एक विचित्र अनुभूति हुई। रामचंद्र राजू की बातें उसके मन में लगातार गूंजने लगी। धर्माराव सोचने लगा, रंगा जम्मा ने मेरी कितनी सहायता की, उनका मुझ पर कितना प्रेम था, पर मैंने उनकी कोई सेवा नहीं की। हृदय की अनुभूति बड़ी विचित्र होती है, वह अनुभूति अनजाने में हो जाती है। किसी सामान्य अनुभूति का स्वरूप ठीक ठीक बताना संभव होता है, परंतु कोई कोई महनीय अनुभूति ऐसी होती है जो मन को स्पर्श किए बिना ही इंद्रियों तक पहुँच जाती है। वह व्यक्त नहीं होती, हृदय में घनीभूत होकर एक प्रकार की अस्पष्ट गुदगुदी उत्पन्न करती है। वह अनुभूति हृदय में छोटी सी तरंग के रूप में उत्पन्न होती है और इंद्रियों तक आकर उनमें प्रवेश किए बिना केवल अपने छोरों का स्पर्श करती हुई अपने आप में लय हो जाती है। धर्मराव को ऐसी ही अनुभूति हो रही थी। अरुंधति और धर्मराव सेज पर लेटे थे। अरुंधति, जान पड़ता है किसी गहरे सोच में डूबे हैं। धर्मराव, रंगा जम्मा के बारे में सोच रहा हूँ। अरुंधति, क्या सोच रहे हैं? धर्मराव, गर्भाधान के समय मैंने नागन्ना शेट्टी से कर्ज मांगा था। उसने पहले तो इनकार किया पर दूसरे ही दिन कर्ज दे दिया। उसी समय मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था। अब मुझे पता चला है कि कर्ज रंगा जम्मा ने दिलाया था। शेट्टी ने कर्ज की वसूली लिखकर परसों मुझे प्रोनोट लौटा दिया। इसी को गुप्त दान कहते हैं। कहते हैं कि गुप्त दान करने वाले किसी महालोक को प्राप्त होते हैं। उस लोक का सौभाग्य अवर्णनीय है। अरुंधति, मैं जितना सोचती हूँ उतना ही मुझे लगता है कि आप लोग मनुष्य जाति के नहीं हैं। रंगा जम्मा तो कदापि नहीं, निश्चय ही कोई अप्सरा थी, नहीं तो वह कस्तूरी, वह सुगंध द्रव्य, वह मूल्यवान साड़ी, जीवन का वह अपूर्व वैभव और मरते समय भी वही सब। सोचती हूँ कि किसी का शाप पाकर रंगा जम्मा स्वर्ग से भूलोक पर आई थी, शाप समाप्त हुआ और अपने आए हुए रास्ते स्वर्ग लौट गई। धर्माराव ने अरुंधति का जी भरकर चुंबन लिया। उसके मन में एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। उसे लग रहा था कि आज का उसका प्रिया समागम रंगाजम्मा की आत्मा को दिया हुआ तर्पण है। रामचंद्र राजू ने सुवर्णापेठ में स्थायी रूप से रह जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, आवश्यकता पड़ने पर तुनी प्रांत में जाना और लौट आना उचित होगा। बहुत होगा तो वहाँ 2-3 महीने लगातार रहकर खेती का काम ठीक कर लूँगा और फसल कटते ही यहाँ लौट आऊँगा, पर मेरा स्थिर निवास होगा यहीं। रथंतरी आज तक सुवर्णापेठ में रहने का विरोध करती आई थी, परंतु अब वह स्वयं सुवर्णापेठ छोड़कर जाने को तैयार न थी। यहाँ के बंधु बांधवों के प्रति उसके मन में अपार ममता उत्पन्न हो चली थी। मंगा का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वह रथंतरी से अजीब अजीब बातें किया करती। रथंतरी की देवरानी अरुंधति सचमुच एक रत्न थी। वह रथंतरी पर प्राण न्योछावर करती थी। नदद थी गिरिका, वह दुल्हन थी, मुग्धा थी। उससे बातें करने में रथंतरी खाने पीने के सुध भी भूल जाया करती थी। रथंतरी का बच्चा मंगा अरुंधति और देवदासी को छोड़कर पलभर भी नहीं रहता था। उछल उछल कर उनके पास जाता, उनकी गोद से माँ के पास भी ना आता। सावित्री देवी से बेहद हिल मिल गया था। सावित्री देवी पौत्र को बहुत प्यार करती और घर लौट कर स्नान करती। प्रतिदिन कम से कम एक बार बच्चे को गोद में लिए बिना उन्हें चैन न पड़ता। अरुंधति, गिरिका और रथंतरी के मेल जोल में बड़ी रोचकता आने लगी। दिन ढलते ही देवदासी और अरुंधति रामचंद्र राजू के घर पहुंच जाती। देवदासी कहती, भाभी जी चोटी बनाओगी? रथंतरी कहती, तेरी चोटी बनाऊं तो मुझे क्या देगी? अरुंधति कहती, देगी क्या, एक चुंबन देगी। रथंतरी कहती, मुझे नहीं चाहिए इसका चुंबन, हम कोई ग्वाले थोड़े ही हैं। गिरिका मुंह लटका लेती। अरुंधति कहती, आरी लड़की, मैं बनाऊंगी तेरी चोटी, पर जरा यह तो बता कि तुझे चूमते समय मुझे माखन की बास क्यों आई थी। रथंतरी, अरुंधति यह बात ठीक नहीं, इस लड़की का चुंबन लेने को तुम्हें किसने कहा? नहीं कहा तो टीका टिप्पणी क्यों करती हो? उसके चुंबन में चाहे माखन की बास आए चाहे मलाई की, हमें क्या पता कि माखन खाकर किसने उसका चुंबन लिया था। अरुंधति, लोग तो पान खाकर चुंबन लिया करते हैं, पर हमारी ननद की बात ही और है, इसका ढंग ही अनोखा है। गिरिका रूठ कर जाने लगती। रथंतरी उसे पकड़ लेती और उसके गाल पर चपत लगा कर कहती, ओहो आखिर ननदपन जाने नहीं दोगी ना? हमने तुम्हें क्या कहा? 2-4 बातें सुनाए बिना ही कोई चोटी बनाता है? दौड़ी दौड़ी जा रही है, कहाँ जाएगी? वृंदावन जाएगी या विजयवाड़ा? इसी गांव में क्यों नहीं रह जाती? क्या यहाँ ग्वालों के घर नहीं हैं? दोनों देवरानियाँ खूब हंसती। गिरिका अपने आप को छुड़ाकर भाग निकलने का प्रयत्न करती। रथंतरी कहती, अरुंधति यह लड़की ऐसे नहीं मानेगी, एक रस्सी ले आओ और इसे खंभे में बांध दो, ऐसा अनुभव एक बार हो जाए तो ठीक होगा। अरुंधति कहती, जाने भी दो दीदी, अनजान लड़की को क्यों तंग करती हो? आ जा रही गिरिका, मैं तेरी चोटी बनाऊंगी, तुझे पसंद है ना? फिर गिरिका चुप हो जाती। अंत में अरुंधति या रथंतरी उसकी चोटी बनाती और लगातार परिहास चलता रहता। एक दिन अरुंधति ने गिरिका को चोटी बनाते समय राज्य लक्ष्मी देवी की सिखाई हुई कला का उस पर प्रयोग किया। बोली, अय लड़की जरा संभल कर, हाँ पहले ही तू छड़ी जैसी है, तेरी चोटी भी छरेरी है, कहीं आपे से बाहर होकर स्वामी को इससे मार तो नहीं बैठेगी? यह सुनकर गिरिका ने सिर झुका लिया और जार जार रोने लगी। दोनों देवरानियां घबरा गईं और उसे समझाकर रोने का कारण पूछा। गिरिका बोली, स्वामी ने आज तक एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम हो कि लगातार उलाहने देती जा रही हो, मेरी यह मुफ्त की बदनामी क्यों? यह सुनकर रथंतरी और अरुंधति दोनों चुप हो गईं। देवदासी 10 दिन से उपवास कर रही थी। उपवास के साथ साथ दिन भर भगवान का भजन करती थी। निरंतर भजन में रत्नगिरी का घर मानो वैकुंठ बन गया। कोई भी देवदासी को आग्रह पूर्वक खाना नहीं खिला पाया। अब रह गया अकेला धर्माराव, परंतु उसे भी संदेह था कि इस मामले में गिरिका उसकी बात मानेगी या नहीं। जो गिरिका पहले हृष्टपुष्ट दिखती थी, आज उपवास के कारण दुबली पड़ गई। उसके शरीर में उष्णता बढ़ने लगी और शीतोपचार की उसे अधिकाधिक इच्छा होने लगी। तथापि उसके मुखमंडल पर दिनों दिन ग्रीष्म की नदी की भांति एक अनूठी शोभा बढ़ती गई। उस दिन एकादशी थी। देवदासी, अरुंधति और रथंतरी मंदिर में गईं। बड़ी रानी भी आ पहुंची। वे अरुंधति को जानती थीं। उन्होंने रथंतरी का परिचय पूछा। अरुंधति बोली, रंगा जम्मा की बहू हैं। उपवास के दिनों में देवदासी मंदिर में किसी से बोलती न थी। उसके शरीर में संपूर्ण यौवन का उदय हुआ था। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, बाल जूड़े में बंधे थे। उपवासों के कारण दुबले हो गए शरीर में कठिन उरोज ऐसे लगते थे मानो उसका वक्षस्थल उभर आया हो। पतली कमर उसे एक अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थी। उसने अधखुले नेत्रों से रानी की ओर देखा। रानी ने मन ही मन कृष्ण कृष्ण का जाप किया। अरुंधति और रथंतरी रानी के दोनों ओर चल रही थीं। रानी उनका अनुसरण कर रही थीं। सब मंदिर में जा पहुंची। इन दिनों जब भी देवदासी आती, वेणुगोपाल स्वामी का मंदिर उसके लिए खोल दिया जाता। जिस दिन स्वामी का चूड़ामणि नीचे गिरा था, उस दिन पुजारी ने देवदासी की महत्ता जान ली थी। देवदासी के आते ही वह मंदिर का द्वार खोल देता और उसे माई कहकर पुकारता। पुजारी के मन में एक प्रकार का परिवर्तन आया। मंदिर में रानी की अपेक्षा देवदासी का ही अधिक आदर करने लगा। मंदिर के अंतर्भाग में पहुंचते ही देवदासी हाथ जोड़कर स्वामी के चरणों की ओर देखती हुई बोली, यही चरण शौनक आदि मुनियों के महान योग तथा तपस्या का लक्ष्य है। यही चरण श्रुतियों के मार्ग में विद्यमान है। फिर उसकी आंखें डबडबा आईं और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। अरुंधति और रथंतरी भौचक सी उसके पार्श्वों में खड़ी रही, उसे संभाल रही थी। रानी निश्चेष्ट थी। ऐसा लगा कि मंदिर में स्थिर स्वामी कुछ आतुर हो रहे हैं। उन्हें यह धीरज था कि देवदासी गिरेगी तो उसे संभालने वाले मौजूद हैं। ऐसा लगता था कि स्वामी के ही पांव टिक नहीं पा रहे हैं। देवदासी फिर कहने लगी, धरती माता, तूने पिछले जन्म में जाने कितने पुण्य किए थे, तभी तो प्रभु ने शूकर बनकर तुम्हें गले लगाया, ब्राह्मण बालक बनकर तुम्हें नाप लिया और कृष्ण बनकर तुम पर अपने पदचिन्ह छोड़े। कहती कहती देवदासी धरती पर गिर पड़ी। रथंतरी और अरुंधति ने उसे संभाल कर धीरे धीरे बलिपीठ के पास लिटाया। पाद टिप्पणी में, देव मंदिरों में भगवान की मूर्ति के सम्मुख बलि अन्न आदि रखने का पीढ़ा बलिपीठ कहलाता है। देवदासी बड़ी देर तक बेसुध रही। अंत में जब उसे सुधि आई तो सबकी सब मंदिर के बाहर निकल आई। पुजारी का दिया हुआ प्रसाद सबने खाया। रानी, देवियों, गिरिका को अच्छी तरह संभालना। हर व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म का फल भिन्न प्रकार से मिलता है। यह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही फल है कि गिरिका की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। दूसरे दिन रानी ने धर्माराव को बुला भेजा। धर्माराव रानी का दर्शन करने गया। अब सभी लोग जान चुके थे कि धर्माराव की पढ़ाई के लिए रुपया बड़ी रानी दे रही है। उसका कोठी में जाना किसी को विचित्र नहीं लगा। रामेश्वरम आदि सभी लोग यह बात जानते थे। छोटे जमींदार जानबूझकर चुप थे, इसलिए बाकी लोग भी चुप थे। धर्माराव को देखते ही रानी उठ खड़ी हुई। धर्माराव को सिर पिटाकर बोला, माँ जी, यह क्या, आप मुझे यह गौरव दे रही हैं? मैं तो आपका लड़का हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रानी, नहीं भैया, मैं ही तुम्हारी लड़की हूँ। तुम जिस प्रकार गिरिका की रक्षा कर रहे हो, मेरी भी रक्षा करना। धर्माराव, माई, यह क्या मेरे हाथ में है? मेरे बस में होता तो मैं आपकी रक्षा न करता। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। गिरिका के लिए मैंने कुछ नहीं किया, वह स्वयं देवदासित्व के भाव की प्रतिमूर्ति बन गई है। शताब्दियों से देवदासी की संस्था हमारे देश में नष्ट होती जा रही है। संभवतः उसकी महत्ता का दर्शन कराने के लिए ही गिरिका ने जन्म लिया है। माँ जी, पुराना सब कुछ नष्ट हो रहा है, नया आ रहा है। रंगा जम्मा को देखिए, वे प्राचीन काल के भावोन्माद, पातिव्रत्य और वर्ण स्वच्छता का प्रतीक थीं। उन्हीं के साथ ये सब गुण समाप्त हो गए। कृष्णम नायडू प्राचीन राजाओं के प्रतीक थे, उन्हीं के साथ वे गुण भी समाप्त हो गए हैं। इस देवदासी के साथ देवदासी प्रथा भी नष्ट हो जाएगी। आप ही अंतिम रानी हैं जो यहाँ की परंपरा से परिचित हैं। इन सबको नष्ट होते देखना ही मेरा काम है, शायद इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मैं भी इस युग के अनुरूप नहीं हूँ। ये सब एक अस्तंगत समाज की अंतिम झलकें हैं।